हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। तब करिश्मा जी ने फिर कहा, बेटा, मैंने सोचा था कि तारा इस बार काफी ताकतवर होगी, लेकिन उसके पास कोई खास ताकत नहीं है। आखिर वो तो एक मामूली इंसान ही है। उसके पास केवल तपस्वी महाराज का दिया हुआ कुछ शक्तियाँ हैं और साथ ही तिलस्मी कड़ा और जादुई अंगूठी की शक्तियाँ। पर ये सब शक्तियाँ बहुत मामूली हैं। ये केवल छोटे मोटे हादसों से तारा को बचा सकती हैं। लेकिन अगर उस राक्षस ने तारा का मुकाबला करने की कोशिश की तो उसे कोई नहीं बचा सकता। ऐसा कहकर करिश्मा जी रोने लगीं। उन्हें अपने होने वाले वंशज की चिंता होने लगी थी। वो जानती थीं कि उनका वंशज उनके लिए कितना महत्वपूर्ण था, उसके लिए उसने कितना इंतजार किया था। पर राजा विक्रम के आ जाने से उन्हें तारा के साथ साथ अपने वंशज की भी चिंता सताने लगी थी। वहीं अमन का भी बुरा हाल था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने अपनी माँ से कहा, मॉम, तारा तो एक मामूली लड़की है, वो कैसे उस खूंखार राक्षस का सामना करेगी? मैं तारा को कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। तब करिश्मा जी ने अमन को समझाने की कोशिश की, बेटा, हमारी भलाई इसी में है कि हम उस राक्षस से जितना हो सके बचकर रहें। अगर हमने उसका सामना करने की कोशिश की तो वो हमें और तारा को नष्ट कर देगा। लेकिन मुझे किसी और की चिंता नहीं है, सिर्फ अपने होने वाले वंशज की। अगर तारा या हमारे वंशज को कुछ हुआ तो हम किसी काम के नहीं रहेंगे, हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। अपनी माँ की बात सुनकर अमन ने उन्हें संभालने की कोशिश की और कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी ही समाधि में जाऊंगा और ज्यादा ताकत हासिल करूंगा ताकि मैं उस दुष्ट राक्षस का मुकाबला कर सकूं। तब तक आप तारा का ख्याल रखिएगा। अमन की बात सुनकर करिश्मा जी को कुछ तसल्ली हुई। उन्होंने कहा, चलो बेटा, ऊपर चलते हैं, शायद तारा उठ गई हो। ऐसा कहकर वे उस लाल कमरे से निकलकर बंगले के हॉल में आ गए। वहाँ उन्होंने देखा कि तारा अभी नहीं उठी थी। इसका मतलब था कि तारा सो रही थी। तब करिश्मा जी ने अमन से कहा, तुम जाओ और तारा को देखो, वो ठीक तो है ना? अगर वो सो रही है तो सोने दो, उसे परेशान मत करना। उसे ये मत बताना कि पिछले जन्म का राजा जो उसके पीछे पड़ा हुआ था इस जन्म में भी आ गया है, वो घबरा जाएगी, इसलिए उसे कुछ मत बताना। करिश्मा जी की बात सुनकर अमन ने सिर हिला दिया और कहा, बिल्कुल मॉम, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। फिर वो तारा को देखने चला गया। जैसे ही वो अपने कमरे में गया, उसने देखा कि तारा सोई हुई थी। क्योंकि कुछ देर पहले दोनों के बीच प्यार हुआ था, तारा ने कुछ नहीं पहना था। अमन ने उसे एक नज़र देखा, मुस्कुराया और फिर उसे एक ढीला नाइट गाउन पहनाया। फिर वो उसके उठने का इंतजार करने लगा। तारा सोते हुए बहुत मासूम और खूबसूरत लग रही थी। अमन का दिल नहीं कर रहा था कि वो उसे जगाए। तब अमन उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, मैं जानता हूँ तुम्हारे सर पर कितनी बड़ी मुसीबत मंडरा रही है, लेकिन तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा पति तुम्हारे साथ है। अमन ने कड़ा इरादा किया और तारा के माथे पर किस करके अपनी माँ के पास नीचे आ गया। वहीं करिश्मा जी बेचैनी से टहल रही थीं। उन्होंने अमन से कहा, बेटा, तुझे आज या कल समाधि के लिए जाना होगा। अमन पहले समाधि में चला जाता था, लेकिन अब तारा की वजह से उसे जाने का मन नहीं था। पर तारा की सुरक्षा के लिए उसका समाधि में जाना जरूरी था। जब तक अमन समाधि में नहीं जाएगा, तब तक उसके पास ज्यादा शक्तियाँ नहीं आएंगी और वो अपनी थोड़ी सी शक्तियों से उस दानव से मुकाबला नहीं कर पाएगा। करिश्मा जी ये बात जानती थीं, इसलिए उन्होंने अमन को बगीचे में जाने की सलाह दी, जहाँ उसके दादा जिन महाराज बरगद के पेड़ पर समाधि लिए हुए थे। तब अमन ने कहा, मॉम, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आज ऑफिस जाकर काम किसी और को सौंप दूंगा, फिर समाधि में चला जाऊंगा और तारा को सारी बात समझा दूंगा, लेकिन उसे उस राजा के आने के बारे में नहीं बताऊंगा। मैं नहीं चाहता कि वो परेशान हो, वो माँ बनने वाली है और उसका ठीक रहना ज़रूरी है। वहीं अमन के जाने के बाद तारा सोकर उठ चुकी थी और उसने अमन की बातें सुन ली थीं। तारा को एहसास हुआ कि कुछ बात है और उसने खुद को देखा तो पाया कि उसने नाइट गाउन पहना हुआ है, जबकि उसे याद था कि अमन के साथ प्यार होने पर उसके ऊपर कोई कपड़ा नहीं था। उसे समझ आ गया कि अमन ने उसे गाउन पहनाया था। तब तारा हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं और आपको पता चल गया है कि वो राक्षस मेरी जिंदगी में आने वाला है, शायद उसी से बचने के लिए आप हमेशा मेरे साथ रहना चाहते हैं, लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इतनी ताकतवर हूँ कि मैं उस राक्षस का मुकाबला कर सकती हूँ। हालांकि अभी मेरी ताकत इतनी ज्यादा नहीं है कि मैं उसे मार सकूं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मैं खुद को कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगी, और वो मेरे शरीर की जो ख्वाहिश करता है उसे वो कभी पूरा नहीं कर पाएगा। तारा ने मन ही मन में इरादा किया और जल्दी से उठकर नहा धोकर तैयार हो गई, क्योंकि उसे भी बगीचे में जाना था। उसे उस दानव का पता लगाना था कि वो किस रूप में आया है और उसका अंश किसके अंदर है। साथ ही उसे करिश्मा जी के पति के गायब होने की वजह पता लगानी थी। तारा ने सोच लिया था कि वो करिश्मा जी के पति को भी ढूंढेगी और खुद को उस राक्षस के अंश से बचाएगी। वहीं दूसरी ओर विक्रांत रंधावा ने अपनी माँ को छुड़ा लिया था और उसे एक सुरंग जैसी जगह पर ले गया था जहाँ बहुत अंधेरा था, लेकिन विक्रांत ने अपनी शक्तियों से वहाँ रोशनी भर दी और अपनी माँ से कहा, मॉम, वो जिन चाहे जितनी कोशिश कर ले आपको यहाँ नहीं ढूंढ पाएगा, क्योंकि वो जगह घने जंगलों के बीच जमीन के नीचे एक सुरंग थी। वो जानता था कि ये जंगल कोई आम जंगल नहीं बल्कि मायावी जंगल है और यहाँ जिन्नातों की शक्तियाँ कम हो जाती हैं। कितनी देर तक दोनों माँ बेटा एक दूसरे के गले लगकर रोते रहे। तब विक्रांत की माँ बोली, मैं जानती हूँ तुझे तारा इस जन्म में मिल चुकी है और वो अमन की पत्नी है, लेकिन बेटा उसे पाना इतना आसान नहीं होगा। अपनी जिद क्यों नहीं छोड़ देता? मैं नहीं चाहती कि तू ये जन्म भी तारा के चक्कर में बर्बाद कर दे। आखिर तुझे औरतों की कमी थोड़ी ना है, क्यों तू उस तारा को अपने दिलो दिमाग में जमाए बैठा है? विक्रांत की माँ पिछले जन्म में अपने बेटे के बुरे हाल को देख चुकी थी, इसलिए वो इस जन्म में नहीं चाहती थी कि विक्रांत तारा के पीछे पड़े। तारा के चक्कर में ही तो उसने अपना पिछला जन्म बर्बाद किया था। अपनी माँ की बात सुनकर विक्रांत के आँखों में गुस्सा आ गया और उसने कड़े शब्दों में कहा, मैंने आपको पहले भी समझाया था और आज भी समझा रहा हूँ, तारा का शरीर मेरी कमजोरी है और मैं उसे पाकर रहूँगा। मुझे हर जन्म में हर रात हर दिन सिर्फ उसका शरीर चाहिए और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी शादी अमन से हो चुकी है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि उसने मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत की है। वो बिना बताए इस पृथ्वी पर आ गई है जबकि वो परीलोक में हर रात मेरे साथ बिताया करती थी, लेकिन मैं उसका मारापन एक दिन भी भंग नहीं कर पाया। मैं उसका शरीर पाकर भी नहीं पा पाया था, लेकिन अब मैं जानता हूँ कि अगर मैंने उसका शरीर पा लिया तो उसके होने वाले बच्चों की जान अपने आप चली जाएगी और वो हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी, और मेरा एक रूप जो परीलोक में कैद है वो भी आज़ाद हो जाएगा। अपने बेटे की बात सुनकर उसकी माँ कुछ नहीं कह सकी। वो जानती थी कि अगर उसने तारा के खिलाफ कुछ कहा तो उसका बेटा उसकी जान लेने से पहले एक पल भी नहीं सोचेगा, क्योंकि